लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। नवीकृत गहराई से पुनर्मिलन संस्कार का अनुभव प्राप्त करने के लिए आइए प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर की असीम दया का स्वाद ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 28 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù sul monte davanti a tre dei suoi discepoli.
चालीसा काल का यह दूसरा रविवार हमें निमंत्रण देता है कि हम पर्वत पर अपने तीन शिष्यों के सामने यीशु के रूपांतरण पर चिंतन करें। कुछ ही देर पहले यीशु ने घोषित किया था कि यरूशलेम में उन्हें बहुत दुख उठाना होगा, अस्वीकार किया जाना और मार डाला जाना होगा। संत पापा ने कहा,
possiamo immaginare cosa deve essere successo allora?
हम कल्पना करें कि उनके करीबी दोस्तों, उनके शिष्यों के दिल में क्या गुजरा होगा। एक शक्तिशाली और विजयी मसीह की कल्पना अब संकट में थी। उनके स्वप्न बिखर गए थे और वे उस विचार से परेशान थे कि गुरुवर जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, वे डाकुओं की तरह मार डाले जाएंगे। और ऐसे समय में आत्मा की पीड़ा में यीशु पेत्रुस, याकूब और योहन को बुलाते और अपने साथ उन्हें पर्वत पर ले जाते हैं। सुसमाचार कहता है उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। बाइबल में पहाड़ का हमेशा एक विशेष अर्थ है। यह एक ऊंचा स्थान होता है जहां आकाश और पृथ्वी एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, जहां मूसा और नबियों ने ईश्वर से मुलाकात करने के असाधारण अनुभव किए थे। पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा ईश्वर के करीब आना है। यीशु उस ऊंचाई पर अपने तीन शिष्यों के साथ चढ़े और पहाड़ की चोटी पर रुके। उनके सामने उनका रूपांतरण हो गया। उनके चेहरे चमकीले और उनके वस्त्र उजले हो गए, जो पुनरुत्थान की झलक प्रस्तुत की। यह उन भयभीत पुरुषों को अंधकार से पार होने की ज्योति प्रदान की, आशा की ज्योति, अंधकार को पार करने का प्रकाश। मौत सब कुछ का अंत नहीं होगा, बल्कि यह पुनरुत्थान की महिमा को खोल देगी। हालांकि यीशु अपने मृत्यु की घोषणा करते हैं, वे उन्हें पर्वत पर ले जाते और दिखलाते हैं कि पुनरुत्थान के बाद क्या होने वाला है। संत पापा ने कहा,
Come esclamò l'apostolo Pietro in quel momento, è bello sostare con il Signore.
जिस तरह प्रेरित पेत्रुस घोषित करते हैं कि प्रभु के साथ पर्वत पर होना कितना अच्छा है, इस प्रकाश के पूर्व दर्शन को चालीसा काल के बीच में हमें जीना है। यह याद करने का निमंत्रण है, खासकर उस समय में जब हम कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हैं, कि प्रभु जी उठे हैं और अंधकार को अंतिम शब्द होने नहीं दिया है। कई बार हम अपने आप में, परिवार में या सामाजिक जीवन में अंधकार के क्षण से होकर गुजरते हैं और भय होता है कि आगे कोई रास्ता नहीं होगा। हम उस बड़ी पहेली के सामने डर महसूस करते हैं, जैसे बीमारी, निर्दोष पीड़ा या मौत का रहस्य। विश्वास की इस यात्रा में हम बहुधा लड़खड़ाते, क्रूस के ठोकर और सुसमाचार की मांग को सामने पाते हैं, जो हमें सेवा के लिए समय देने और अपने जीवन को बचाने एवं रक्षा करने की अपेक्षा प्रेम से खर्च करने का आह्वान करती है। इस प्रकार हमें एक दूसरे नजरिए की जरूरत है, एक प्रकाश की जो जीवन के रहस्य की गहराई को प्रकाशित करती और हमें अपनी योजनाओं और दुनिया के तौर तरीकों से परे जाने में मदद देती है। संत पापा ने कहा कि हम भी पर्वत पर चढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, पुनरुत्थान की सुंदरता पर चिंतन करने के लिए जो हमारे जीवन के हर आयाम में प्रकाश के किरण बिखेरता है। हमें अपने पास का विजय के साथ इतिहास का विश्लेषण करने में सहायता दे। तब संत पापा ने आध्यात्मिक आलस्य से सावधान करते हुए कहा, हम सावधान रहें। पेत्रुस के उस अच्छा लगने कि हमारे लिए यहाँ होना अच्छा है, आध्यात्मिक आलसी न बने। हम पहाड़ पर इस मुलाकात के सुखद अनुभूति का आनंद लेने के लिए रुके नहीं रह सकते। यीशु स्वयं हमें घाटी पर वापस लाते हैं, हमारे भाई बहनों और दिनचर्या के बीच। संत पापा ने कहा कि हम आध्यात्मिक आलस्य से सावधान रहें, कि हम अपनी प्रार्थनाओं एवं धर्म विधियों में सही हैं और यह हमारे लिए पर्याप्त है। जी नहीं, पहाड़ पर चढ़ने का अर्थ वास्तविकता को भूलना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ जीवन की कठिनाइयों को अनदेखा करना कभी नहीं हो सकता। विश्वास के प्रकाश का अर्थ सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करना भी नहीं है। जी नहीं, यह यीशु का संदेश नहीं है। हम ख्रिस्त के साथ मुलाकात करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि उनके प्रकाश से आलोकित होकर उसे अपने लिए ले सकें और सभी ओर चमकाएं, लोगों के दिलों में छोटा दिया जलाएं, सुसमाचार के छोटे प्रकाश बने जो प्रेम और आशा के दिए पर जले। यही एक ख्रिस्ते का मिशन है। संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम अति पौत्र मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें ख्रिस्त के प्रकाश को विस्मय के साथ स्वागत करने, उसे सुरक्षित रखने और बांटने में मदद दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत उन्होंने विश्वासियों का अभिवादन किया। उसके पश्चात उन्होंने विभिन्न घटनाओं की याद की। संत पापा ने नाइजीरिया में स्कूल छात्राओं के अपहरण पर खेद प्रकट करते हुए कहा,
Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria.
मैं नाइजीरिया के धर्मदर्शकों के साथ अपनी आवाज उस नीच अपहरण के लिए उठाता हूँ जिसमें देश के उत्तर पश्चिम में यांजेबे स्थित स्कूल के 317 छात्राओं का अपहरण कर लिया गया है। मैं उन लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे जल्द अपना घर लौट सकें। मैं उनके तथा उनके परिवार वालों के करीब हूँ। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें।
प्रेगियामो ला मादोना पर्के ले कुस्तोदिस्का।
उसके बाद संत पापा ने विश्व दुर्लभ रोग दिवस की याद करते हुए इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने दुर्लभ रोग से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की और उनके एवं उनके परिवार वालों की मदद करने वाले संगठन के सदस्यों को प्रोत्साहन दिया। तब संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Saluto di cuore tutti voi.
मैं आप सभी का सारे हृदय से अभिवादन करता हूँ। रोम के विश्वासी एवं विभिन्न देशों के तीर्थयात्री, आप सभी के लिए इस चालीसा काल की शुभ यात्रा की कामना करता हूँ। संत पापा ने इस पुण्य काल में उपवास करने हेतु प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं आप सभी को उपवास करने की सलाह देता हूँ। एक ऐसा उपवास जिसमें आपको भूख सहन करना नहीं पड़ेगा, गपशप और पीठ पीछे शिकायत करने से उपवास, यह एक खास तरीका है। हम संकल्प लें कि इस चालीसा काल में दूसरों की चुगली नहीं करेंगे, गपशप नहीं करेंगे। संत पापा ने कहा, इसको हम सभी कर सकते हैं, यह एक अच्छा उपवास है। तब संत पापा ने सुसमाचार का पाठ करने की सलाह दोहराई और कहा, यह ना भूलें कि हर दिन सुसमाचार के एक अंश का पाठ करना भी लाभदायक होगा। अपने पॉकेट या बैग में सुसमाचार की छोटी प्रति रखें और जब कभी संभव हो कहीं से भी इसे पढ़ लें। यह हृदय को ईश्वर के लिए खोलने में मदद देगा। और अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Buon pranzo e arrivederci.
और जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।
जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 1 मार्च को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में फ्लोरेंस से आए फ्रांसिस्कन सोलिडारिटी सेंटर के प्रतिभागियों का स्वागत किया। संत पापा ने सेंटर की निदेशिका मारिया यूजेनिया को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, कई वर्षों से फ्लोरेंस शहर में आप ऐसे लोगों की सुनने और उनके साथ रहने की एक अनमोल सेवा कर रहे हैं, जो खुद को कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में पाते हैं, जिन परिवारों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बुजुर्ग या अक्षम लोग जिन्हें सहायता और सहचर्य चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, एक ऐसी दुनिया में जो दो गति से चलती है, जो एक ओर धन का उत्पादन करती है और दूसरी ओर असमानता को उत्पन्न करती है। आप स्वैच्छिक कार्य के आधार पर सहायता के एक प्रभावी कार्यकर्ता हैं और विश्वास की नज़र में आप उन लोगों में से हैं जो ईश्वर के राज्य का बीज बोते हैं। संत पापा ने कहा कि दरअसल अपने पिता के राज्य की घोषणा करने के लिए यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए। उन्होंने खुद को गरीबों के करीब रखा जो हाशिए पर थे और समाज से त्यक्त कर दिए गए थे। संत पापा ने संत मती के सुसमाचार के उन वचनों को याद दिलाते हुए कहा, जहाँ यीशु कहते हैं, मैं भूखा था और आपने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और आपने मुझे पिलाया। इस प्रकार मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर के हृदय को प्रकट किया है। वे एक पिता हैं जो अपने पुत्र और पुत्रियों की गरिमा की रक्षा और संवर्धन करना चाहते हैं। वे हमारे मानवीय, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कहते हैं, ताकि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और उसे रौंदा ना जाए, किसी को भी भौतिक रोटी की कमी या अकेलेपन से पीड़ित नहीं होना पड़े। संत पापा ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए साहस के साथ उन्हें जारी रखने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने उनके लिए ईश्वर के सामर्थ्य हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हमारा अच्छा हृदय और हमारी मानवीय ताकत पर्याप्त नहीं है। इन चीजों को करने से पहले और उससे परे, जब हम एक गरीब व्यक्ति का सामना करते हैं, तो हमें एक ऐसे प्यार के लिए बुलाया जाता है जो हमें हमारे भाई और हमारी बहन को महसूस कराता है, और यह संभव है क्योंकि मसीह उस व्यक्ति में उपस्थित है। संत पापा ने असीसी के संत फ्रांसिस की मध्यस्थता द्वारा उनके लिए प्रार्थना करने का आश्वासन दिया। उधर 8 साल पहले लागू हुए परमाध्यक्ष का इस्तीफा एक मुश्किल विकल्प था, लेकिन पूर्ण अंतरात्मा की आवाज में बनाया गया था। इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें अपनी नाजुक आवाज में एक बार फिर से दोहराते हैं, जिसे उन्होंने पहले कई बार कहा है, कि थोड़ा कट्टरपंथी दोस्तों को नकारने के लिए जो उम्र के कारण इस्तीफा देकर पेत्रुस की कुर्सी छोड़ने के फैसले के पीछे साजिश सिद्धांतों को देखना जारी रखते हैं। यह जोसेफ रात्सिंगर द्वारा कोरियेरे देल्ला सेरा के साथ एक साक्षात्कार में दोहराया गया था। सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें बताते हैं, यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन मैंने इसे पूरी चेतना में लिया और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। मेरे कुछ कट्टरपंथी मित्र अब भी नाराज हैं। वे मेरी पसंद को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मुझे लगता है कि इसके पीछे साजिश के सिद्धांत हैं, जिसमें कहा गया कि यह वाटिलिक्स कांड की गलती है। समलैंगिक लोबी द्वारा कुछ साजिश और रूढ़िवादी लेफ्रेबियन धर्मशास्त्री रिचर्डन के कुछ मामले। वे सचेत विकल्प में विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा जमीर ठीक है। सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने भी संत पापा फ्रांसिस के इराक की प्रेरितिक यात्रा की बात की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। दुर्भाग्य से यह बहुत ही मुश्किल क्षण में हो रहा है, जो कोविड और सुरक्षा कारणों में से इसे एक खतरनाक यात्रा भी बनाता है। और फिर इराक में अस्थिर स्थिति है। मैं अपनी प्रार्थना द्वारा फ्रांसिस का साथ दूंगा। जैसा कि दुनिया ने रविवार 28 फरवरी को 16वें विश्व दुर्लभ रोग दिवस के रूप में चिन्हित किया है, संत पापा फ्रांसिस ने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित कई लोगों, विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रार्थना करने हेतु लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, एक दुर्लभ बीमारी से निपटने के लिए एकजुटता का नेटवर्क पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे अकेलापन महसूस करने वाले लोगों की मदद करते हैं और अनुभव और सलाह साझा करने हेतु बढ़ावा देते हैं। संत पापा ने बीमार लोगों, विशेषकर बच्चों और उनके परिवारों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे उन बीमार बच्चों के निकट हों जो पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें ईश्वर के प्रेम और कोमलता को महसूस करने में मदद करें। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टर्कसन ने रविवार को एक संदेश जारी किया, जिसमें समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा को रेखांकित किया। कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि 6000 से अधिक बीमारी को दुर्लभ माना जाता है और अधिकांश 72% वंशानुगत है, जबकि 70% बचपन में शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा, दुर्लभ बीमारियों वाले लोग समाज में सबसे कमजोर समूहों में से हैं। वे उन विकृतियों से पीड़ित होते हैं जिनका अक्सर कोई इलाज नहीं होता है। कोविड-19 महामारी ने इस कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है, जिससे उपचार और उचित देखभाल करना और भी कठिन हो गया है। इसलिए कार्डिनल ने नीति निर्माताओं और संस्थानों से सभी लोगों, खासकर दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने का आग्रह किया। उधर म्यांमार में पुलिस ने तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 अन्य घायल हो गए। यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो एक बार फिर पार्टियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।